Shruti Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jay Mudire Nashta Praesha Bhadresho Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nishtikim. Srimad Bhagavatam Skanda 7 Adhyay 10 श्लोक संख्या 13 है ना। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवे न हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेश्यसि मुक्तबन्ध भोगेन भौतिक सुख की अनुभूतियों से पुण्यम पुण्य कर्म या उनके काम कुशलेना पवित्रता पूर्वक कर्म करके समस्त पवित्र कर्मों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पापम अपवित्र कार्यों के सभी प्रकार के फल कलेवरम भौतिक शरीर कालजवेन शक्तिशाली काल द्वारा हित्वा त्याग कर कीर्तिम कीर्ति ख्याति विशुद्धां अलौकिक या पूर्णतया शुद्ध सुरलोक गीतां स्वर्ग में भी प्रशंसित बिताय सारे ब्रह्मांड में विस्तार करके माम मुझ तक ऐश्यसी वापस आओगे मुक्त बंध बंधन से मुक्त होकर। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। तात्पर्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रणाश्यांसेन साधन सिद्धत्वम नित्य सिद्धत्वम च नारत्व गेयम। भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं, साधन सिद्धि तथा नित्य सिद्धि। प्रहलाद महाराज मिश्रित सिद्ध हैं, अर्थात वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं। इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। विगत काल में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु यह संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पदम पदम यत विपदम, इस तरह भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। प्रहलाद महाराज जैसा उन्नत भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में भौतिक शरीर से मुक्त रहता है। होम अज्ञान तिम्रांध्य ज्ञान शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अविष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वंदे अहम श्री गुरो श्रीपद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परजन सहतं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। वांछाकल्पतरभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर विषय चल रहा है, भक्त श्रोमणी प्रहलाद। भक्तों को भी श्रोमणी प्रहलाद, और पीछे से आप सुन ही रहे हैं। नारद जी ने कहा है कि, क्योंकि नारद जी की शिष्य थे ना वो प्रहलाद जी, तो अपने शिष्य पर गर्व होता है। जिसका शिष्य खूब उन्नत हो तो गुरु को बड़ा गर्व होता है इस बात का। तो नारद जी ने कहा कि यद्यपि प्रहलाद बालक थे, भगवान ने प्रहलाद जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए वर देने के, कि ये वरदान मांगो वो वरदान, कुछ भी मांग सकते हो, बहुत प्रलोभन दिए। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद बालक होते हुए भी बड़ा बुद्धिमान था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो वरों के प्रलोभन हैं, सांसारिक जो भौतिक जो लाभ हमको मिलेगा, ये भक्ति में बाधक होता है। संसार की जितनी वस्तुएं हमारे पास होंगी, जितना वस्तुओं से हमारा लगाव होगा, उतना कृष्ण से हमारा भी लगाव होगा। कृष्ण के पास नहीं जा सकते हम। तो नारद जी कहते हैं कि यद्यपि बालक होते हुए कितना बुद्धिमान था, कि भगवान ने कितना उनको प्रलोभन दिया कि ये मांगो वो मांगो कुछ भी मांग लो, पर प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा ठीक है तुम नहीं मांगते तो मैं तुमको जबरदस्ती देता हूं, है ना। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप मांगने की बात करते हो, यदि आप देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि कभी भी मेरे हृदय में भौतिक कामनाएं कभी उत्पन्न ही नहीं हो, है ना। देखिए क्या वर मांगा है कि कभी मेरे हृदय में मांगने की इच्छा क्या, कभी भौतिक इच्छाएं भौतिक कामना ही उत्पन्न हो, क्योंकि जो भौतिक कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो यश जो धैर्य क्षमता तपस्या सब का नाश कर देती है ये कामनाएं। तो इसलिए प्रभु आपसे मेरा यही विनती है कि मेरे हृदय में कभी भी भौतिक इच्छाओं की कामनाएं कभी उत्पन्न ही ना हो। भगवान बोले ठीक है तुम कुछ नहीं मांगते मैं तुमको देता हूं, वो जबरदस्ती मेरा आदेश है ये, तुमको इस मनमंत्र यानी इस मनमंत्र एक मनमंत्र तक तुम्हें दैत्यों का इतने भोग विलास हैं, दैत्यों के राजाओं के सारे भोगों को आप भोगो, एक मनमंत्र तक राज्य करो और उसके बाद फिर तुम मेरे पास वापिस आ सकते हो। और तुम ये सोचो कि भाई इतने हम भौतिक विषयों में भौतिक भोगों में रहेंगे तो संसर्ग में आकर के मन दूषित हो सकता है, तो भगवान बोले ऐसी बात नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ग्रहेषु वस्ताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम, जो व्यक्ति अपने कार्य कौशल में कुशल होता है, अपने कार्यकलाप में कुशल होता है, तो ग्रहेषु वस्ताम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी न बंधाय गृहमता, वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सांसारिक भोगों में रहते हुए भी न बंधाय, उसे बंधन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता, बोले मद वार्तायात यामानाम, मद वार्तायात यामानाम, जो आठवां याम मेरी कथा कीर्तन में भजन साधन में जो रत रहता है आठवां याम मेरा चिंतन करता है, तो न बंधाय ग्रह कुशल कर्मणाम, ऐसे कुशल व्यक्ति के लिए घर गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं बनती। और देखो तुम जानते हो कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परम ईश्वर के रूप में विराजमान रहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परम ईश्वर के रूप में विराजमान हूं, तो तुम भी अपने हृदय में मेरा ही दर्शन करते रहना, मेरा ही चिंतन करते रहना। तो भले ही तुम भौतिक जगत में रहोगे, तो पिछले श्लोक में कल कहा था कि भौतिक जगत में रहते हुए भी आप मेरा चिंतन करोगे अपने हृदय में और मेरी कथा वार्ताओं को जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं, मेरी कथा वार्ताओं का हमेशा श्रवण करते रहोगे और अपने सारे कर्मों से मुझे ही प्रसन्न करते रहोगे, तो इस तरह से तुम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि भोगेन पुण्यम, भोगेन पुण्यम, भोगों के द्वारा पुण्य क्षीण हो जाते हैं, है ना। जो हमारे काफी पुण्य जो होते हैं उन पुण्यों के द्वारा जो हमको भोग मिलते हैं, तो उन भोगों को भोगने के द्वारा भोगों को भोगते हैं तो पुण्य क्षीण होते रहते हैं। तो भोगे न पुण्यम, जो सांसारिक भोगों को भोगने जब भोगते रहोगे, सुखों को भोगते रहोगे तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और कुशले न पापम, और निष्काम कर्म निष्काम भक्ति में रहोगे, निष्काम कर्म योग करते रहोगे तो उससे पाप क्षीण हो जाएंगे। तो पुण्य और पाप जब दोनों ही क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पुण्य भी कर्म का, पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप तो बंधन का कारण है ही है। तो भगवान कहते हैं कि भोगे न पुण्यम, जब तुम खूब भोग खूब ऐश्वर्य को भोगोगे तो उससे पुण्य पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और कुशले न पापम, और कुशलतापूर्वक तुम अच्छा कर्म योग भक्ति योग में रहोगे तो उससे पाप क्षीण हो जाएंगे। कलेवरम काल जवेन हित्वा, तो इस प्रकार जब वो बलवान काल, क्योंकि सभी के लिए काल तो दबोचता ही है, उस बलवान काल के द्वारा जब तुम्हारा शरीर तुम त्याग करोगे तो जब तुम शरीर को त्याग करके जाओगे तो तुम्हारी कीर्ति का गायन देवलोक में भी है ना। बोले सुर लोक गीताम कीर्तिम विशुद्धाम, तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान देवलोक में भी किया जाएगा। इस तरह से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यहां शील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने कहा है कि प्रहलाद जी साधन सिद्ध नित्य सिद्ध दोनों ही श्रेणी में आते हैं, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध दोनों ही श्रेणी में आते हैं। अर्थात वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं, और इनकी तुलना नारद जी से की गई है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, नारद जी से इनकी तुलना की गई है, क्योंकि विगत काल में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने कारण उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त कर ली नारद जी ने, है ना। बड़ा सुंदर नारद जी का प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर दृष्टांत वो आता है, कथा आती है कि एक बार जो भगवान वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण इतिहासों की रचना की, वेदों को भी चार भाग विभक्त कर दिया, फिर असंतुष्ट थे, ऐसा लगता था कि मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो तस्यैव खिल महात्मानो मन्यमानस्य खिद्यतः, जिस प्रकार वो बड़े अपने मन में खिन्न मन बैठे हुए थे वेद व्यास जी, तो उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आया हुआ देख करके व्यास जी प्रसन्न हुए कि लगता है अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि नारद जी के दर्शन करते ही सारी चिंताओं से छुट्टी हो जाती है, ऐसे महान संत थे नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि क्या बात है व्यास जी, इतने खिन्न मन और इतने असंतुष्ट से क्यों लग रहे हो, क्या बात है, तुमने तो बड़े बड़े ग्रंथों का खूब रचना की है प्रभु, तो आपकी कृपा से सब कुछ ठीक किया है, सब कुछ किया है, फिर खिन्न क्यों हो, क्या बात है, प्रसन्न क्यों नहीं हो। वेद व्यास जी बोले प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी हमसे ही जानना चाहते हो, तो इसलिए हम खिन्न हैं, क्योंकि हमने इतने शास्त्र पुराणों और इतिहासों की व्याख्या करने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा कार्य अभी अधूरा ही है। नारद जी बोले तो यही तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ कहां है, बोले यथा धर्मादेश अर्था मुनि वर्य ही अनुवर्णत मुनि वर्य अनुकीर्त न तथा वासुदेव से महिमा ही अनुवर्णत, बोले जिस प्रकार आपने यथा धर्मादेश अर्था मुनि वर्य ही अनुकीर्त, जिस प्रकार आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, इसमें तो लोग वैसे ही फंसे हुए हैं ना, धर्म करके क्या होगा, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और पुण्य निमृत लोग विसंति, फिर बोले छीण होने पर फिर मृत्यु लोग में आना पड़ेगा। अर्थ धन ज्यादा कमाएंगे तो धन में आसक्ति होगी, धर्म अर्थ काम इत्यादि काम वैसे लोग बहुत सारी कामनाएं रहती हैं, तो तुमने विस्तार से वर्णन किया ऐसे तो लोगों का और बंधन ही होगा, मुक्ति कहां होगी। तो जिस प्रकार तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया, न तथा वासुदेव से महिमा ही अनुवर्णित, उस प्रकार आपने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं। और देखो यदि तुम वास्तव में अपने मन को शांति चाहते हो, लोगों का कल्याण चाहते हो और भगवान की प्रसन्नता चाहते हो तो तुम भागवत महापुराण की रचना करो। वो क्या है भागवत, बोले मैं बताता हूं। तो नारद जी ने चार श्लोक बताए, अहम ये वास्मि वाग्री नान्यत जस सत असत परम पश्चात हम यदि तच युवशिष्य सोस्म हम ऋतु अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीय चात्मनि तद विद्या दात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महांत भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वन प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम एतावदेव जिज्ञास्यम तत् जिज्ञासनात्मना अनवय व्यतिरेकाभ्यम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले ये चार श्लोक हैं भागवत के, और ये कोई मैंने अपनी तरफ से बना के नहीं सुनाए, ये भगवान नारायण ने हमारे पिताजी ब्रह्मा जी को बताए थे ये, और ब्रह्मा जी ने अपना शिष्य समझ करके हमको ये बताया है, और हम भी यही जो परंपरागत आ रहा है वही आपको बता रहे हैं। और इन चार श्लोकों को विस्तार से इसका वर्णन करो, 18,000 श्लोकों का वर्णन करो उसका। और तुम ये सोचो कि भाई ये कार्य को जटिल सा लगता है, तो जानते हो संतों की कृपा से जटिल कार्य भी सुलभ हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष में उदाहरण, अहम पुरातीत भवि भव मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां सुशूषणे प्रावृषि निर्व्यभिज्ञताम्। नारद जी स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो संतों की कृपा से सब कार्य सुलभ होता है। अरे मेरे को देखो ना, अहम पुरातीत भवि भवम, मैं पहले एक दासी पुत्र था, परंतु संतों की कृपा से, क्योंकि मेरी मां संतों की सेवा करती थी, जो संत एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे तो मेरी मां उनकी सेवा करती थी, मैं छोटा ही था, 5 साल का बालक था, यद्यपि वो मेरी उम्र खेलने की थी पर मैं मेरी खेलने रुचि नहीं होती थी। जब मेरी मां संतों की सेवा करती तो मुझे भी मौका मिल गया संतों की सेवा करने का, मुझे अवसर मिल गया, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, क्योंकि संतों की सेवा बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। तो उनकी सेवा करते करते और उनका कुछ प्रसाद भी, उनकी आज्ञा लेकर प्रसाद भी कुछ खा लेता तो उनका एक तो श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और संतों का प्रसाद ही पाया तो एकदम मेरा मन निर्मल हो गया। अब तो मुझे भगवत चर्चा के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगे, ऐसे लगता है कि हमेशा हमेशा भगवान की चर्चाओं का ही श्रवण करता रहूं, भगवान की लीलाओं का ही श्रवण करता रहूं। पर क्या हुआ कि जैसे 4 महीने पूर्ण हुए उस महात्मा जाने लगे, मैंने कहा स्वामी जी हमको भी साथ ले चलो, तो महात्मा बोले नहीं नहीं अभी जाने का तुम्हारा अभी समय नहीं है, जब समय आए तो घर छोड़ सकते हो, तो फिर मैं बिना तुम्हारे रह नहीं सकता, कोई बात नहीं तुमको हम एक मंत्र बता देते हैं उसका जप करना, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोले इस मंत्र का ठीक से ध्यान करते रहना, जप करते रहना, और अभी तुम घर में ही रहो क्योंकि तुम्हारी मां असहाय है, तुम्हारे अलावा तुम्हारी मां का और कोई सहारा भी नहीं है, एकमात्र तुम ही एक मां के सहारे हो, और तुम भी घर छोड़ के चले जाओगे तुम्हारा मां का क्या हाल होगा, क्योंकि पिताजी तुम्हारे हैं ही नहीं। इसलिए मां की सेवा करना तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है मां की सेवा करो। जब तक तुम्हारी मां जीवित है तब तक खूब सेवा करो और इस मंत्र का जप करते रहो। जब तुम्हारी मां परलोक सिधार जाए फिर तुम वन में जा सकते हो, संन्यास ले सकते हो और खूब, लेकिन अभी तुम मां की सेवा करो। और वास्तव में मां की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, परम धर्म है। माता पिता की सेवा से कोई व्यक्ति कभी भी उड़ नहीं हो सकता। इस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मार करके और तुरंत अपनी माता पिता को छुड़ाने के लिए कारागार में गए, यद्यपि उनके माता पिता तो एकदम बड़े सहम गए कि ये तो भगवान है भाई, इसको हम पुत्र मान रहे थे, कितने बलवान दुष्ट को कंस को मार के आए। तो भगवान ने विचार किया ये बात्सल्य भाव से पूरा दूर रहे हैं और अब भी इनको ये कि ईश्वरी भाव आ गया तो फिर ये कहाँ पुत्र का लाभ उठा पाएंगे। तो भगवान ने अपनी योग माया से उनको वही वात्सल्य भाव उन्हें स्थापित कर दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे अपने माता पिता की। बोले हे मेरी माँ, हे मेरे पिताजी, हमको क्षमा करना क्योंकि हम जन्म लेते ही आपसे विलग हो गए, आपकी सेवा नहीं कर पाए। क्योंकि हर पुत्र का धर्म है, सबसे पहला धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। क्यों है तो उन्होंने बहुत सुंदर भगवान ने कहा है, सर्वार्थ संभवो देहो जनतः पोस्तो यतः। सर्वार्थ संभव, सर्वार्थ यानी सब अर्थों को प्रदान करने वाला ये शरीर है ना। इस शरीर से हम साधना करते हैं ना, तो शरीर से साधना करके हम भौतिक वस्तुएं, आध्यात्मिक वस्तुएं, भगवत धाम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर से ही साधना की जाती है। तो सर्वार्थ संभवो देहो, ये शरीर सर्व सर्वार्थ सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाला, सब कुछ प्रदान करने वाला इस शरीर से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो क्या है बोले जनतः पोस्तो यतः, जो जो माता पिता के द्वारा इसको जन्म मिला है, इस शरीर को किसे जन्म मिला है, माता पिता से। तो बोले माता पिता से इसे जन्म मिला है और पोषतः, और उन्होंने इनका पालन पोषण करके इतना बड़ा शरीर कर दिया है। फिर इस शरीर के माध्यम से हम बहुत सारे साधन करके, बहुत सारी कुछ करके, बहुत सारे जो मन में इच्छा वही हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वार्थ संभव, सारे अर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इस शरीर को देने वाले माता पिता हैं और उसका पालन पोषण करने वाले वही हैं, इतना बड़ा हमको कर दिया, तो जो व्यक्ति माता पिता की पित्रो मर्त्य सतायु सह, पित्रो कहते माता पिता दोनों, जो व्यक्ति माता पिता की 100 वर्ष तक भी खूब सेवा करता रहे, सतायु सह 100 वर्षों तक खूब सेवा करे है, तब भी निर्वेशम, तब भी वो उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत आया है, समय थोड़ा सुनाता हूं फिर भी। नरसिंह पुराण में ही दृष्टांत दिया है, नरसिंह पुराण में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। वो सती सावित्री दूसरी सावित्री थी, लेकिन वो भी पतिव्रता थी सावित्री, ब्राह्मण की पत्नी। और जो उनके पति थे वो भी बड़े बहुत धर्मज्ञ थे, बड़े धर्मात्मा थे, वेदों के ज्ञाता थे, परम भक्त थे। और एक दूसरी पतिव्रता स्त्री और थी, उसका नाम था रोहिणी, जो यज्ञ शर्मा ब्राह्मण थे उनकी पत्नी थी वो। तो दो पतिव्रताओं की बड़ी सुंदर दृष्टांत दिया है। तो बोले जो यज्ञ शर्मा नाम के ब्राह्मण थे उनकी पत्नी थी रोहिणी, उस वो भी बहुत पतिव्रता थी, क्योंकि स्त्री का जो सबसे परम धर्म है, मुख्य धर्म, पहला धर्म, वो है पति की सेवा। क्षय पति कैसे दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधरो पिवा। पति ही स्त्री बिन हातव्य लोकेप्सुर पातकी, ऐसा कहा गया कि पति चाहे बुरे स्वभाव वाला हो, चाहे 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 वो मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, जैसा भी हो, यदि वो पातकी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, तो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि पति की सेवा करे। तो ये दोनों पतिव्रताओं बड़ी सुंदर कथा कही है कि दोनों स्त्रियां बड़ी पतिव्रत धर्म में रहती थीं। तो जो यज्ञ शर्मा नामक ब्राह्मण थे, उनका पुत्र था देव शर्मा, उसका नाम था देव शर्मा, जैसा पिताजी का नाम वैसा पुत्र का नाम रखा देव शर्मा, वो थे यज्ञ शर्मा, इसका नाम रखा देव शर्मा। ये रिंकू चिंकू पिट्टू ऐसे नाम नहीं थे तो यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र देव शर्मा को बहुत सारे वेदों का, शास्त्रों का वो अध्ययन कराया और खूब भक्ति में प्रवीण किया, खूब भक्ति में, क्योंकि माता पिता का प्रथम कर्तव्य है संतान को ऐसे संस्कार दे जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, ये माता पिता का परम धर्म है। तो यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र देव शर्मा को खूब बड़ा अध्ययन कराया वेद शास्त्रों का, खूब भक्ति मार्ग बताया। पर कुछ समय के बाद जब उनका पुत्र कुछ जवान हो गया तो देव शर्मा का फिर यज्ञ शर्मा का फिर देहांत हो गया, मतलब परलोक सिधार गए वो। इधर जो उनका पुत्र था देव शर्मा, वो खूब जवान हो गया, ब्रह्मचारी था और बड़े वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता भी था और बड़ा परम भक्त भी था, संसार से वैरागी भी हो गया था। तो जैसे उसके पिताजी तो स्वर्गलोक को चले गए और उसने अपनी माता को छोड़ करके घर त्याग करके उसे वैराग हो गया, घर त्याग करके वो वन में चला गया और वन में जाकर के खूब तपस्या करने लगा। ब्रह्मचारी थे वो, बड़े परम तपस्वी, बहुत महान तपस्वी और ब्रह्मचारी बन गया वो। एक बार नदी में स्नान करके उसने अपने कपड़े सुखाने डाल दिए और आसन लगा करके बस संध्या वंदन करने बैठ गया, कपड़े सुखाने डाल दिए। तो उसी समय क्या हुआ कि एक कौवा और एक बगुला, दोनों ही मित्र थे वो, और दोनों ही दुष्ट होते हैं, बगुला भी दुष्ट होता है और कौवा भी दुष्ट होता है। तो एक कौवा और बगुला दोनों मित्र आए, उसके कपड़े को चोंच में लेकर के उड़ने लगे, वो जो सूख रहे थे और कपड़े लेकर उड़ने लगे, वो उड़ने लगे तो उसने उनकी ओर देखा, वो दौड़ा उसकी ओर कपड़े छुड़ाने के लिए, तो कौवा और बगुला दोनों ही उस कपड़ा तो डाल दिया पर उस पर डीट कर दी उन्होंने, डीट कर दी अपनी, डीट करके उड़ जाते। तो उस तपस्वी ब्राह्मण ने देखा, ब्रह्मचारी ने, कि देखो उन दुष्टों ने मेरे कपड़े उड़ा के ले गए और फिर उन पर डीट कर दिया। बड़ी क्रोध की दृष्टि से उनको देखा, क्रोध से देखा, तपस्वी था, उसकी तपस्या का क्रोध था, उस क्रोध से वो दोनों पक्षी झुलस के नीचे गिर गए, झुलस गए, वो जल गए, मर गए वो। अब उसने विचार किया, अरे अरे मेरी तपस्या तो बड़ी महान है, बड़ा तपस्वी होता हूं, मेरी दृष्टि से ये जल गए। अब उससे अपनी तपस्या का थोड़ा घमंड सा हो गया, मैं तो बड़ा भारी तपस्वी हूं। तो वो ब्रह्मचारी था, भिक्षाटन करता था, मधुकरी मांग करके अपना जीवन निर्वाह करता था और कुछ तपस्या करता था, लेकिन उसे अभिमान हो गया कि मैं बड़ा भारी तपस्वी हूं। तो एक दिन वो वहीं मध्य प्रदेश में जो कश्यप नाम के ब्राह्मण थे उनके घर पहुंचा और उनकी पत्नी का नाम था सावित्री, वो भी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा कर रही थी वो। अब ये ब्राह्मण ही पहुंचे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, दरवाजे पर गए, भिक्षा मांग रहे, पर विचारी पति की सेवा कर रही थी, कुछ सेवा कर रही, देखा कि भिक्षा मांग रहा है और देखा फिर सेवा करने लगी, भिक्षाम देही, पर वो अपने पति की सेवा कर रही है। काफी देर हो गई, अब ब्रह्मचारी बड़ा क्रोध आ रहा, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और ये अपने पति की सेवा कर रही है, अभी बताओ कम से कम उनको भिक्षा तो आके दे जाती। और उसने देख लिया, देख करके काफी देर हो गई, वो बड़ा क्रोध में आ रहा है, लाल पीली आंखें कर रहा है, देखो अपनी जब सेवा पूर्ण हो गई उस पतिव्रता की, फिर वो भिक्षा देने आई, लो ब्राह्मण कुमार भिक्षा लो, क्या मेरी ओर ये से देख रहे हो तुम क्रोध से, भिक्षा लेनी तो लो नहीं तो जाओ, क्या मुझे भी तुम उस बगला और कौआ की तरह भस्म करना चाहती हो क्या? दरअसल तुमने कौआ और बगला भस्म कर दिया। अब ब्रह्मचारी बड़े आश्चर्य, इसे कैसे पता लग गया, मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं, इसे कैसे पता लग गया, ये भिक्षा लेके आ तो गया वो, पर वही मन में बार बार चिंतन कि इसको 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 कैसे पता लग गया। भिक्षा रखी उसने, रख करके उससे अब भिक्षा अच्छी नहीं लग रही, मौका देख करके उसी स्त्री घर आया, देखा उसके पति तो कहीं काम से निकल गए अकेली है, और जाकर के पहुंचा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, देवी आपसे एक बात पूछूं। क्या? बोली आपको ये कैसे पता लग गया कि मैंने कौआ और बगुला को भस्म कर दिया था दृष्टि से? तो जो सती स्त्री थी बोली, ब्राह्मण कुमार तुम्हें अपनी तपस्या का बड़ा भारी घमंड है ना, ये तपस्या तुम्हारी फलीभूत नहीं होने वाली और तुम नीचे गिराएगी, क्यों घमंड हो गया तुम्हें, और फिर तुम तपस्या जो किए हैं वो तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली। मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रत के धर्म, पतिव्रत की तपस्या से ही मैं आगे और पीछे की सब दृष्टि सब जान जाती हूं, है ना। पतिव्रत धर्म इतनी शक्ति है कि सब कुछ क्या होने वाला और क्या हो गया और क्या हो रहा है सब ये दृष्टि मिल जाती है हमको। तुम भी एक पतिव्रता स्त्री के पुत्र हो, बोली तुम भी एक पतिव्रता स्त्री के पुत्र हो, तुम्हारे पिता खत्म हो गए और तुम्हारी मां असहाय है, असहाय, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं, उसका कोई सहारा भी नहीं है, और कैसी बेचारी अपना समय काट रही है वो, कैसा जीवन बिता रही है वो, और तुम यहां आकर के मद करी करके अपनी मौज मस्ती ले रहे हो, तपस्या कर रहे हो, क्या तुमको सफलता मिलेगी इसमें? उसने देखा कि उसे सब पता लग गया, मेरी पिताजी सुधार गए, मेरी माँ ऐसी है और अकेला मैं ही माँ का हूं, तो और चरणों में गिर गया, देवी है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई उपाय बताओ मेरा कैसे कल्याण होगा। बोले कल्याण यही होगा, यही तुम अपना कल्याण चाहते हो, सीधे घर जाओ माँ की सेवा करो, और जब माँ सुधार जाए उसके बाद तुम चाहे संन्यास लेना चाहे कुछ भी लेना, अभी जाके वो कर्तव्य करो। ठीक है देवी। तो वो ब्राह्मण कुमार अपनी मां के पास आया, उसकी सेवा करी, सेवा करके खूब सेवा करता रहा, फिर उसने शादी विवाह भी किया, विवाह करके संतान भी उत्पन्न की, फिर बाद में वो सन्यासी हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति की उसने। तो यहां वही नारद जी का दृष्टांत दिया प्रभुपाद जी ने कि नारद जी तो वही ऐसे ही महान भक्त थे जो दासी के पुत्र थे, और वो कह भी रहे वेद व्यास जी कि हम पुराती तो भाई वो हम मुने दास्यास्त कस्यास्त वेदवाद ना, मैं भी एक वेदवादी ब्राह्मणों का सेवा करता था और उस सेवा से मुझे ये लाभ मिला, संतों की सेवा का ये लाभ मिला कि मैं दास जी के पुत्र से नारद हो गया। संतों की सेवा का ही फल है। और देखो मेरे हाथ में बीणा देख रहे हो, बीणा, ये बीणा कोई दिल्ली की कनाट मार्केट कनाट प्लेस से नहीं खरीदी है, या पालक बाजार से नहीं खरीदी है, और कहीं बड़े बड़े शहरों से कहीं नहीं खरीदी, इस लोक में ऐसा कोई मार्केट नहीं वहां ये बीणा मिल जाए। देवदत्त इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषताम मूर्छित्वा हरकताम गायमानस चराम्य हम, ये जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये देवदत्त इमाम वीणा देवलोक से प्राप्त हुई है मुझे, और स्वर ब्रह्म विभूषताम हमेशा ये ब्रह्म स्वर से विभूषित रहती है हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये हमेशा इस वीणा से कीर्तन करता हुआ मैं किसी भी लोक में बिना किसी सवारी के बिना किसी यान के, यानी देखना वो देवताओं पर किसी पर गरुड़ जी हैं तो किसी पर नादिया हैं तो किसी के हंस हैं तो किसी कोई सवारी, नारद जी कोई सवारी नहीं, और सवारी वालों से भी पहले एक सेकंड में पहुंच जाते हैं, हम उनको जाना हो किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं नारद जी। बोले ऐसी हमको शक्ति प्राप्त हो गई, हम किसी भी लोक में जहां भी इच्छा होती तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तो ये सब संतों की सेवा करने का ही तो हमको फल मिला है। तो संतों की सेवा करने से सब कुछ होता है। तो यहां श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो नित्य सिद्ध भी थे और साधन सिद्ध भी थे, मिश्रित थे। जैसे नारद जी भी नित्य सिद्ध भक्त बन गए, नित्य सिद्ध बन गए, और नारद जी ने फिर किन से जन्म लिया? कोई माता पिता से नहीं। मरी चत्री अंग्र सौ पुलस्त पुल है क्रतु भृगु वशिष्ठो दक्ष दशमस्तत्व नारद। जब सृष्टि का वर्णन आया है तो कहा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीची और आंखों से अत्री इत्यादि ये ऋषि उत्पन्न किए, तो दसवें पुत्र दशमत्त नारद, नारद जी भी गोद से उत्पन्न कर दिए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। तो इस तरह से भगवान ने उनको प्रहलाद जी से कहा कि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, आप खूब भोगों को भोगो, जो आपको ऐश्वर्य जो भोग मिले हुए हैं उनको खूब भोगो, इनको भोगने से जो पुण्य है पुण्य कर्म वो क्षीण हो जाएगा, और कुशलेन पापम, और कुशलता पूर्वक कार्य करोगे अर्थात भक्ति करोगे तो भक्ति करने से आपके सारे पापी नष्ट हो जाएंगे, और जब पुण्य और पाप ये दोनों कर्म क्षीण हो जाएंगे तो जब तुम इस शरीर को त्याग करोगे, शरीर को त्याग करके फिर मामेव ऐससी मुझे प्राप्त होगे, मेरे धाम को आओगे, और देवलोक में तुम्हारी खूब वंदना होगी, स्वर्लोक गीतम विशुद्ध कीर्ति, तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गायन देवलोक भी करेंगे, देवता भी करेंगे, और तुम सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे, मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। तो ये भगवान ने नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के लिए ये सब कुछ कहा कि चिंता मत करो, अभी तो तुम एक मनमंत्र तक राज करो, बाकी तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो यही हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।